ओम शांति, ओम शांति। तो आज के इस प्रश्नोत्तरी सत्र में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है। और हमारे बीच हमारे आदरणीय सूरज भाई जी आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पहुंचे हैं। हम भाई जी का एक हाथ उठा करके स्वागत करेंगे। धन्यवाद। तो आप सबके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं। आप सभी जानते हैं कि, और मैं खुद अनुभव करता हूं कि भाई जी के जो उत्तर होते हैं बहुत शार्ट और दिल को लगने वाले। भाई जी को इस ब्राह्मण संसार में मैं समझता हूं ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं होगा जो भाई जी से परिचित ना हो। सभी परिचित हैं, सभी जानते हैं। जैसे ज्ञान सूर्य बाबा अपनी लाइट माइट सारे संसार में फैलाते हैं, ऐसे आप ज्ञान सूर्य बाबा की तरह मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके सारे संसार को प्रकाशित करते रहते हैं। मैं भाई जी को बचपन से ही जानता हूं। एक बार मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो एक नान बी के उसने कहा क्या पढ़ रहे हो, तो मैं भाई जी का ही योग के संदर्भ में पढ़ रहा था। तो देखिए वो एक नान बी के वो पढ़ करके क्या कहता है कि ये आर्टिकल लिखने वाला कोई बहुत बड़ा विद्वान होगा। तो आप सचमुच आपके क्लास के एक एक शब्द इतने प्रभावशाली होते हैं, आत्मा में इतना ऊर्जा भरने वाले होते हैं, इतना दिल को लगने वाले होते हैं कि मन कहता है सुनते ही रहें। और आप जो कहते हैं आप देख रहे होंगे कि भाई जी जो कहते हैं तो वो भाई जी के जीवन से दिखाई पड़ता है। हाँ, किससे कहेंगे योगी आत्मा, केवल आप कहते नहीं लेकिन आपका जीवन जब हम देखते हैं तो जो योगी आत्मा की निशानी हम सुनाते हैं उस दिखाई पड़ता है। बहुत ही निर्माण चित, सरल चित, है ना, और सब सबका उमंग उत्साह बढ़ाने वाले। तो ऐसे आपके जीवन से अनेक विशेषताएं दिखाई देती है और आपके बहुत सारे प्रोग्राम पीस ऑफ माइंड अवेकनिंग चैनल पर आते ही रहते हैं। आज आप हमारे बीच में हैं हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो आज हम सभी का बहुत बहुत सौभाग्य है। और तीन दिन से वैसे तो हम भाई जी के साथ योग कर रहे हैं, योग की बहुत सुंदर अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई क्लास या ऐसे न मिल जाए तब तक अंदर में आप सब सोच रहे होंगे ना कि भाई जी का कब क्लास होगा। तो बहुत अच्छा हमें चांस मिला है। तो अभी हम एक क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला भाई जी, एक कुछ किसी का प्रश्न आया है कि बाबा का पार्ट आगे कैसे चलेगा, क्या अब बाबा से हमारा साकार मिलन नहीं होगा। तो किसी ने प्रश्न पूछा है,
साकार मिलन उस दिन समाप्त हो गया था जब सभा में बाबा से ब्रजमोहन भाई ने पूछा था कि इस वर्ष को किस नाम से मनाएं, हर वर्ष की एक थीम होती है। बाबा ने कहा था समाप्ति वर्ष। मैं तो समझ गया था क्योंकि बाबा का पाठ उससे पहले 2 साल से ही ढीला चल रहा था, तो ये पाठ तो समाप्त होते ही हैं। रूप रंग बदलते हमने संगम पे देखे हैं। बाबा पहले कैसे मिलते थे, फिर कैसे मिले, फिर कैसे 4 रूप देखे अव्यक्त के भी, तो ये तो खेल पूरा हुआ। अब हमें उनसे मिलने के लिए ऊपर जाना है। इसमें किसी को कोई शक की बात नहीं। मैं ये भी जोड़ दूं, कई जगह लोग कहते रहते हैं फलानी जगह बाबा आ रहा है, इस समय 8 जगह बाबा आ रहा है, आपको बता दूं, सावधान कर दूं। कई होगा बाबा एक मास चला, कई होगा थोड़ा 3-4 मास चला, कुछ लोगों का चल रहा है। ये थोड़ी आत्माएं हैं जो अपना ये रूप लेकर आ जाती हैं, इस भ्रम में नहीं आना है। नहीं तो मिली हुई राह जो 5000 साल के बाद सच्ची राह मिली है उससे भटक जाएंगे,
ठीक है ना? क्योंकि आजकल इतना मुरली में हम सुनते भी हैं कि बाबा मधुबन में ही आता है, मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, लेकिन पता नहीं कैसे लोग बुद्धि भटक जाती है। तो एक बल एक भरोसा, हमारी और कहीं भी बुद्धि ना जाए। ये किसी ने प्रश्न पूछा है कि मैंने आपके बताए हुए बातों पर मैंने काफी प्रयोग किए, स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैंने पानी को चार्ज करके पिए, सुबह सुबह उठ करके श्रेष्ठ संकल्प किए, रात को सोते समय भी हमने श्रेष्ठ संकल्प पॉजिटिव संकल्प करके सोए, लेकिन स्वास्थ्य में जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, क्या करें?
ठीक प्रश्न है, ये कईयों का आता है। हर व्यक्ति सोचता है कि जल्दी ही संपूर्ण स्वस्थ हो जाएं, हम भी सोचते हैं, हमें भी कुछ ना कुछ होता है, मेडिसिन भी लेनी चाहिए डॉक्टरों की, केवल योग के प्रयोग ही काफी नहीं होते हैं। लेकिन साथ में हम ये जानते हैं कि जो ज्ञानियों के लिए इम्पोर्टेंट बात है कि जो कुछ हमारे साथ इस समय हो रहा है वो पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब भी चुकतू हो रहा है। इसलिए मैं इसमें ऐड करूंगा, ठीक होना है कम से कम 1 घंटा, नहीं तो 2 घंटा, 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम इस स्वमान से योग करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ। हो सकता है आप ये भी करते हो और उसको पावरफुल करेंगे, निराश सोने की बात नहीं है। बीमारी कितनी भी आ जाए लेकिन यदि हम अपने मन को बीमार न करें, ध्यान दें सभी, तो शारीरिक बीमारियां जल्दी विदाई भी लेंगी और हमारी स्थिति भी बिगड़ेगी नहीं। पर यदि मन पर उसका गहरा असर आ जाता है तो खेल बिगड़ जाता है, बीमारियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां कलयुग के अंत में मन से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं। इसलिए बहुत सावधानी से आप ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा करते रहें, लेकिन योग बढ़ा दें।
तो उन्हीं का प्रश्न आगे भी है कि मुझे व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, निगेटिव संकल्प, कई बार हम बहुत परेशान हो जाते हैं, कितना भी स्टॉप करना चाहते हैं स्टॉप होता ही नहीं है, और यहाँ तक कि जब हम भोग लगाते हैं बाबा को तो उस समय भी मन भटक जाता है। तो ये व्यर्थ संकल्पों से हमें कैसे मुक्ति मिले?
तो भोग तो पहुंचेगा ही नहीं ऊपर तक, तो बीच में रह जाएगा, कोई और खा जाएगा। व्यर्थ संकल्प ज्यादा हैं, इसीलिए योग अच्छा नहीं लगता है और फिर बीमारियां भी जाती नहीं है। ये प्रश्न इनका नहीं है केवल, किसका है? सारे संसार का है, सारे संसार का, ज्ञानी अज्ञानी सब का। क्योंकि जिस दिन आत्मा व्यर्थ से मुक्त हो जाती है वो दिन उसके लिए संपूर्ण स्थिति का दिन होता है। हम अध्यात्म के मार्ग पे चलने वाले इन संकल्पों को कम करते जाते हैं। अगर कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं, तो विशेष कमजोरियां काम कर रही हैं, ध्यान देना चाहिए। चिंता करने की आदत ज्यादा है, सोचने की आदत ज्यादा है। देख लें आपको कहां संकल्प चल रहे हैं, पर चिंतन ज्यादा किया है जिंदगी में, बातों में ज्यादा रहे। जरा मैं स्पष्ट बोल रहा हूं ताकि आप अपने को परख सकें, बातों में ज्यादा समय बिताया है, भगवान ने कहा तुम्हारा एक एक मिनट एक वर्ष के लिए, उन्होंने 100-200 मिनट रोज वेस्ट किए हैं। ऐसे एक लोग, एक व्यक्ति नहीं, ब्राह्मणों में 90% हैं। इसलिए व्यर्थ चलता है। व्यर्थ को रोकना है तो उसके दरवाजे को बंद करना पड़ेगा ना। ये दरवाजे हैं उसके, कहीं मैंपन उसका दरवाजा है, कहीं काम क्रोध लोभ मोह उसका दरवाजा है, तो कहीं दूसरों के प्रति बुरी भावनाएं उसका दरवाजा है। आज कलयुग के अंत में मनुष्य ने अगर सबसे ज्यादा कोई चीज बिगाड़ी है तो वो है अपनी भावनाएं। या घरों में संघर्ष है या पाप कर्म ज्यादा हुए हैं, मूल्यों में सब आता है। जिसके पाप ज्यादा हैं उनका योग नहीं लगता। इसका अर्थ ये नहीं आपका योग नहीं लगता तो सरेंडर कर दो कि पाप ज्यादा है, क्या करें। उसमें मेहनत की जाती है पापों को नष्ट करने के लिए। तो वो द्वार बंद करें, जिसको बाबा ने 3 छोटे शब्दों में बोल दिया, हियर नो इविल, सुनते ज्यादा हैं, सी नो इविल, देखते भी बहुत इविल हैं, टॉक डू थिंक, ये तो बात की बात है। अच्छे अभ्यास के लिए अगर इनसे बचना है तो दवाई है, इस पे तो क्लासेज हैं बहुत सारी, औरों ने भी कराई हैं, मैंने भी कराई हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, अच्छे स्वमान का अभ्यास। मैं आपको एक दिन के लिए होमवर्क देता हूं, आप एक दिन कोई भी अपने घर जाकर सारे दिन में 100 बार अभ्यास कर लेना, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, प्रकृति की कुटिया में बैठी हूं, 10-15 सेकंड एक बार। 100 बार का अर्थ है हर घंटे में 8 बार, थोड़ी मेहनत है एक दिन केवल, देखना शाम तक कितना व्यर्थ बचता है। दूसरे दिन कोई एक स्वमान ले लेना, 100 बार याद कर जाना, 2-4-5 स्वमान चुन लो, शाम तक देखना व्यर्थ संकल्प बचेंगे ही नहीं। तो ऐसी प्रैक्टिस करें, थोड़ा कम बोलेंगे, ज्यादा बोलने से ब्रेन की शक्तियां भी नष्ट होती हैं, मन पर कंट्रोल नहीं रहता है। थोड़ी साधनाएं करेंगे तो व्यर्थ से बच जाएंगे, क्योंकि व्यर्थ अगर बढ़ता जाता है तो केवल बीमारियां नहीं बढ़ेंगी, स्थिति बिगड़ेगी और आने वाले समय में व्यर्थ और बढ़ जाएगा।
तो उन्होंने साथ में 2-3 क्वेश्चन लिख दिया है।
हाँ, और कोई बात
सब कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब भी हम योग में बैठते हैं या मुरली सुनने बैठते हैं तुरंत निंद्रा देवी आ जाती है।
देवी है वो भी, तो आने में क्या दिक्कत है।
तो क्या करें, निंद्रा देवी से मुक्ति कैसे मिले।
बात तो मेरे पास बहुत है इसकी, लेकिन कभी कोई निंद्रा देवी का आह्वान करने वाला निराश हो जाए। ईश्वर ये सुख भाग्य में नहीं है। भाग्य को चमकाओ, रोज सवेरे उठकर सच्चे दिल से संकल्प करना, मैं संसार में बहुत भाग्यवान हूँ क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है। इस संकल्प को छोटा न मान लेना। संसार के जो टॉप मोस्ट संकल्प हो सकते हैं उनमें से संकल्प हैं। दूसरी बात, ऐसा नहीं आप बहुत जल्दी उठ जाएं। कई लोग 3 बजे उठा करते हैं, उससे भी पहले, फिर रेस्ट नहीं करते। किसी ने बता दिया है योग के बाद सोना नहीं है, तो मुरली के समय सो जाते हैं, कोई बात नहीं, नींद तो पूरी करनी पड़ेगी। थोड़ा दिनचर्या का बैलेंस योग के लिए याद रखना है। जो व्यक्ति बहुत खाता है या बहुत सोता है, जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं खाता या बहुत कम सोता है, वो योगी नहीं बन सकते, क्योंकि योग के लिए ब्रेन को बहुत एनर्जेटिक शक्तिशाली होना चाहिए, इसलिए बैलेंस रखेंगे। तीसरी बात, मुरली अधिक से अधिक लिखने की कोशिश करो। 1 मास अधिक से अधिक वो पॉइंट लिख लिए जाएं, वो आपके काम के हो या ना हो, लिखते रहो तो बहुत अच्छा होगा। मुंह में मिश्री डाल के आ जाया करो, पर ऐसा ना हो मिश्री चबाते चबाते भी सो जाए। जो नींद के महारथी होते हैं उनकी कहानी सुना दूं। हम जब दिल्ली में थे तो हमारी शांतामणि दादी हमारी टीचर होती थी, तो जिन माताओं को नींद आती थी उनको खड़ा कर देती थी, तो दीवार के सहारे खड़े खड़े भी वो 2-3 मिनट के बाद सो जाती थी। तो निद्रा देवी है तो असर तो रहेगा, इसलिए भोजन थोड़ा कम कर दो, कुछ दिन व्रत ले लो, थोड़ा एक हफ्ता आधा कर लो, आधे में ठीक रहेगा, कोई कमजोरी नहीं होगी, अच्छा रहेगा बहुत। और नींद अपनी ठीक करो। कईयों को तो ऐसा होता है, गीत बजता है ना 1 मिनट वाला, क्या शांति की
शक्ति,
इतने शांति की शक्ति हुई और गर्दन नीचे झुक गई, ठीक ठाक थे, बात कर रहे थे और गीत बजा, सोचा योग कर ले और गए। तो थोड़ा चुस्ती ये आवश्यक है। मैं एक ड्रिल बता रहा हूं योग की, ये समस्या है, मैं तो हंसी में जरा इसको पूरा कर रहा हूं, पर जिसकी समस्या है उसके लिए तो यही बड़ी समस्या है, बाकी सब समस्या एक तरफ, योग और मुरली में ही नींद आ जाए तो खेल बिगड़ गया। 10 मिनट योग में बैठो, 5 सेकंड के लिए अभ्यास करो मैं आत्मा हूं, फिर 5 सेकंड के लिए शिव बाबा को देखो, 5 सेकंड आत्मा, 5 सेकंड शिव बबा, फिर थोड़ा बढ़ा दो 7-8 सेकंड, फिर 10 सेकंड, हो सके तो घूमते फिरते कर लो ये अभ्यास, भोजन बनाते कर लो, तो धीरे धीरे ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। ब्रेन को एक्टिव करना है। और अगर कोई लिखने की प्रैक्टिस डाल ले, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट दे रहा हूं चिंतन शक्ति बढ़ाने के लिए, क्योंकि उससे भी नींद खत्म होगी। मैं आत्मा हूं इसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं, पॉइंट लिखो, रोज लिख दो 5-7 पॉइंट, आपके पास 25 पॉइंट आ जाएगी जो आपको ख्याल में ही नहीं है। आत्मा के बारे में हम क्या जानते हैं, फिर परमात्मा के बारे में, फिर ड्रामा के बारे में, कर्म अच्छे कौन से हैं उसके बारे में। बाबा जब साकार में थे तो आखिरी साल बाबा ने लिस्ट बनवाई थी दुखों की, 108 लिस्ट तैयार करो, मुरली में कभी आ जाता है वो। तो हम सब दुखों की लिस्ट लिखते रहते थे, 10-20 के बाद समझ में नहीं आता था और भी कोई दुख है क्या, तो अब पता चला अब तो 108 क्या, शायद 508 हो गए हो। तो ये चिंतन करने से भी ब्रेन एक्टिव हो जाएगा।
तो वो आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता चले कि ये बाबा की टचिंग है, और कई बार ऐसा होता है काम गड़बड़ हो जाता है, फिर बाद में ध्यान आता है कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
हाँ, ये ध्यान देना है कि बाबा की टचिंग के चक्कर में आप न जाओ ज्यादा, क्योंकि आजकल कई भटकती आत्माएं भी टचिंग दे रही हैं। एक प्रैक्टिकल कई बातें मेरे पास आती हैं। एक माता जी कह रही है, बाबा मुझे टच कर रहा है बच्ची, मुरली सुनने नहीं जाना। मैंने कहा तुम्हारा बाबा कोई भूत है, भूल जाओ कि बाबा टच कर रहा, उसने छोड़ दिया, श्रीमत है। टचिंग वही कैच कर सकते हैं जिनका योग 8 घंटे हो, इसलिए चक्रव्यूह में नहीं जाना। कोई अपने विचारों को टचिंग मान लेंगे, किसी को ये भटकती आत्माएं भटका देंगी, बिल्कुल आपको पथ भ्रष्ट कर देंगी, इसलिए इस चक्र को छोड़ दो। बाबा की मुरली में जो बातें आती हैं वही श्रेष्ठ श्रीमत है। और कर्मों का ज्ञान, आपके घर का ज्ञान, आपके धंधों का ज्ञान, ये आपको है, उसमें आप खुद निर्णय लें।
एक प्रश्न किसी ने पूछा है कि हमसे गलतियां बार बार होती हैं, हम उसे सुधारना चाहते हैं, तो हम किस बात का ध्यान रखें कि बार बार गलती ना हो?
कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। अपनी गलती कागज पे लिख लो, बाबा को समर्पित करो, दिखा दो मैं इससे मुक्त होना चाहती हूँ, जलाओ, रोज करो 7 दिन तक, क्षमा याचना करो सवेरे ही रात को भी, क्योंकि ये जो मन उसने गलतियां की है ना पूर्व जन्म में, वो अब फिर गलती करा रहे हैं। और पांच स्वरूपों का अभ्यास बढ़ाओ, क्योंकि जब तक रूहानी शक्ति हमारे अंदर नहीं आएगी, हम अपने को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, गलतियों को सुधार नहीं पाएंगे। मान लो क्रोध की बात है, अब वो ऐसी चीज तो नहीं है कि हमने प्रतिज्ञा कर ली कि आज से क्रोध नहीं करेंगे, छूट गया, वो तो फिर आएगा। तो उसके लिए जो साधनाओं का मार्ग है उसे अपनाएंगे, योग की शक्ति बढ़ेगी, तब गलतियां रिपीट नहीं होंगी, योग पर विशेष ध्यान देंगे।
एक किसी माता का प्रश्न है, वो पूछ रहे हैं कि मेरे युगल डिफेंस में है, हर हफ्ते वीकेंड पर पार्टी याद होता रहता है और मेरा अमृत वेला छूट जाता है और युगल ज्ञान में चलते नहीं है, तो हम क्या युक्ति अपनाएं जो अमृत वेला मिस ना हो।
क्या किस कारण होता है अमृत वेला मिस?
मैंने इनके युगल डिफेंस में
वो तो हो गया
और पार्टी याद होती रहती रात तक।
अच्छा, रात, अच्छा, हाँ, ये उनके साथ
वीकली। हाँ,
ये समस्या ग्रस्त में कईयों के साथ आती है, उनके पति देर से आते हैं कामकाज से या और किसी कारण से सोने में देर हो जाती है तो अमृत वेला मिस होता है। अगर ये कभी कभी होता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हो सकता है इनको भी जाना पड़ता हो पार्टी में, या वो देर से आते हो, तो जब तक आपको जगना है या आप पार्टी में सम्मिलित हैं तभी अच्छा योग कर लो, क्योंकि अगर आप 12 एक बजे सोते हैं तो अमृत वेला उठने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, हेल्थ भी बिगड़ेगी और योग भी बिगड़ेगा। इसलिए एक बैलेंस रख लें। कभी कभी ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, अगर हर 2-3 दिन में हो रहा है तो उस टाइम अच्छा योग कर लें और फिर आराम करें।
किसी एक भाई का प्रश्न है कि हम जो है यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसका अभी फाइनल हमारी तैयारी चल रही है, तो उसमें हमें संपूर्ण सफलता मिले। एक किसी भाई का प्रश्न है, ये जो है यूपीएससी
हाँ,
एग्जाम की ये फाइनल तैयारी कर रहे हैं।
यूपीएससी का अर्थ होता है आईएएस, जो सबसे बड़ा एग्जाम और कंपटीशन है जिसे कलेक्टर बनते हैं। तो इसके लिए कई स्टूडेंट्स ने ये अच्छा अभ्यास किया। पहली चीज होती है अपने में कॉन्फिडेंस, बिल्कुल निगेटिविटी ना हो। ये आपको नहीं सोचना है कि लाखों कैंडिडेट बैठेंगे मेरा नंबर कहाँ आएगा, आपको ये सोचना है 500 सीट हैं, चाहे लाखों क्या करोड़ों बैठ रहे हों, उनमें से एक नंबर मेरा भी है। कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस पर निर्भर करेगी आपकी सफलता। और साथ में सवेरे उठते ही बहुत ही विश्वास के साथ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आई एम सेलेक्टेड, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। अपने को कलेक्टर की कुर्सी पे देखो बैठा हुआ, विजन बनाना, बाहर आपकी नेम प्लेट लगी हुई है, आईएएस लिखा हुआ है, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यही होना है। सवेरे उठकर करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सिलेक्शन करा ही देगा। किसी भी एग्जाम के लिए माताओं ने लिख लिया, अपने बच्चों को ये सिखाएंगे।
तो उन्हीं का दूसरा क्वेश्चन कि जैसे फैमिली में है तो हमें पहले किसकी बात सुननी चाहिए, परिवार की बात सुनना चाहिए, अपने मन की बात सुनना चाहिए,
तीसरा भी तो पूछते हैं, या बाबा की सुननी चाहिए? थोड़ा प्रश्न छोड़ दिया है। जहां परिवार वाले आपको अच्छी बात कह रहे हैं वहां आपको उनकी भी सुननी चाहिए, और अगर वो कह रहे हैं लहसुन प्याज खा लो तो नहीं सुननी चाहिए। तो अगर आप बाबा की सुनेंगे तो आपकी बुद्धि यथार्थ निर्णय लेगी कि क्या सुने क्या न सुने। परिवार वालों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग मत हैं, कोई आपको कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं जो लाखों के अनुभव की है। अगर आप बहुत अच्छे स्वमान में रहते हैं तो परिवार वाले प्यासी नजरों से आपकी ओर देखेंगे कि हमें कब ये अच्छी राय दें। स्वमान को छोटी चीज नहीं जान लेना आप। अब करके देखो बहने, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं पूर्वज हूं, विजय रतन हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान। चुन लो अपने स्वमान 8-10, उन्हें अभ्यास करो। आपको उनकी नहीं सुननी पड़ेगी, वो आपकी सुनने को तैयार रहेंगे। ये एक्सपेरिमेंट करके देखो।
बहुत सुंदर। तो एक ने प्रश्न पूछा है कि कभी कभी अवस्था ऐसी होती है कि ज्ञान योग में बहुत रस आता है, और कभी कभी पता है पुरुषार्थ की विधि क्या है, फिर भी जो उमंग उत्साह खुशी होनी चाहिए वो नहीं होता, ज्ञान योग में रस नहीं आता, कारण?
ये बहुतों के साथ हो रहा है। बहुतों के साथ क्या, प्राय सभी के साथ होता है। बहुत थोड़ी आत्माएं ऐसी होंगी जिनके साथ ये नहीं होता। कलयुग का प्रभाव एक कारण। दूसरा कारण, अपने कुछ संस्कार अंदर से जागृत हो जाते हैं। तीसरा कारण जो बहुत गुह्य है, हमारे ब्रेन की सारे दिन में भिन्न भिन्न स्थितियां रहती हैं जिसको कोई नहीं जान सकता है, ये मनुष्य खुद समझ सकता है। तो कभी वो हमें साथ देता है, कभी वो साथ नहीं देता है। किसी को एक दिन में भी ये होता है, किसी को 2-4 दिन अच्छा उमंग रहेगा, फिर डिले हो जाएंगे। भिन्न भिन्न स्थितियां ब्रेन की बनती हैं। जब आपको लगने लगे कि ढिलाई आ रही है, पता चलना चाहिए, तब अच्छी कोई अव्यक्त मुरली पढ़ लो, ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करो, कोई क्लास सुन लो जो आपको प्रिय हो, थोड़ा विशेष बैठकर 10-10 मिनट योग कर लो। ज्यादा नहीं योग लगेगा, मुरली सुनने को मन नहीं करेगा, इसलिए मैंने कहा क्लास सुन लो, थोड़ा सा वातावरण को चेंज करो, विचारों पे ध्यान दो, क्या गड़बड़ हो रही है, तो जल्दी आप उससे बाहर आ जाएंगे। ये स्थिति थोड़ी बहुत देर चलना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये लंबी चल जाए, 5-7 दिन आपकी स्थिति डाउन रहे, तो फिर इसको अप करने में कई गुना समय लगेगा, क्योंकि स्थिति बिगड़ती है 1 सेकंड में और बनती है सालों में।
उन्हीं का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं पहले ज्योतिषी विद्या पर बहुत विश्वास नहीं रखती थी, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे अनुभव हुए तो लगा कि इसका भी प्रभाव होता है। लेकिन 15 जुलाई की मुरली में, और वैसे भी बाबा ने भी कई बार कहा तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, और मैंने भी स्वयं पर अनुभव किया कि पहले मेरे ऊपर राहु की दशा थी, मैं विमुख हो गई थी, ज्ञान और बाबा से वो दूर हो गए थे, लेकिन जैसे ही मेरे ऊपर बृहस्पति की दशा शुरू हुई मैं फिर से बाबा की बन गई। तो इनको कहते, लेकिन मुझे फिर भी डर रहता है कि कहीं फिर भी मैं राहु की दशा बैठ न जाए और मैं विमुख न हो जाऊं, ये डर बना रहता है।
बहुत कमजोर है प्रश्नकर्ता। राहु की दशा उन पर जो योगयुक्त नहीं है, बृहस्पति की दशा उन पर है जो योगयुक्त हैं, जो कम से कम ये तो याद रखते हैं कि बाबा मेरे साथ है। उसे नाता तो जोड़ लो, नाता सबने नहीं जोड़ा। ऐसे ही गीत गाते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, गाने से नहीं काम चलता, नाता जोड़ो उनसे, उसकी मदद मिलेगी, ये डर निकाल दो। अगर आपको डर है, खराब डर है आपका, कहीं मैं फिर से भी मुख न हो जाऊं, ये कमजोर संकल्प आप में क्यों? भगवान का हाथ छूट न जाए, ये कमजोर संकल्प है, संसार में सबसे ज्यादा कमजोर संकल्प ये है। आपको संकल्प करना है संसार एक तरफ हो जाए, हम बाबा को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है या नहीं? क्यों कमजोर संकल्प ले आए हैं? क्योंकि अगर आप ये कमजोर संकल्प बार बार लाते हैं तो आप हाथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सुख संगति है ये कर्मों की, संकल्पों की। इसलिए संकल्प को यहीं विदाई दो। मेरे ऊपर बृहस्पत की दशा है, मैं महान हूँ, मुझे मेरा हाथ पकड़ने के लिए हजारों लोग तैयार हैं, मैं सबको पार करने वाला करने वाली हूँ, मैं भला मुश्किल से तो भगवान का हाथ और साथ मिला है, उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? ताकत लाओ अपने में, तो कोई शक्ति नहीं जो आपको छुड़ा दे। नहीं तो क्या होगा, कोई भी कहेगा ना हमारे घर बाबा आ रहा है, चलो छोड़ो इस ब्रह्मा कुमारियों को, इनके घर अच्छा, वहीं बाबा से मिलके आएंगे। गए आप, अपने को कमजोर नहीं करना है।
एक किसी का प्रश्न है कि हम 5 साल से ज्ञान में हैं, पवित्रता की धारणा भी कर ली, बाबा से मिलन भी हो गया, लेकिन इनका संकल्प है कि हमारे अंदर और प्योरिटी का बल बढ़े।
4 घंटे रोज योग का प्लान कर लो, थोड़ा बैठकर चाहे 1 घंटा ही बैठो, बाकी 3 घंटा कर्म योग। क्लासेज हैं बहुत सारी, सुन सकते हैं आप, यूट्यूब पर हैं। कर्म योगी कैसे बने, कर्म करते अच्छी स्मृतियों में रहेंगे, क्योंकि प्योरिटी बिना योग बल के नहीं आती। हमें अपनी प्योरिटी को अपनी ताकत बनाना है तो योग बल को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो प्योरिटी युद्ध बना रहेगा। और प्योरिटी की परिभाषा बहुत गहरी है, केवल ब्रह्मचर्य नहीं और बहुत पहलू हैं इसके। इसलिए योग बढ़ाएंगे, प्योरिटी सुखदायी हो जाएगी।
एक प्रश्न है, लगता है किसी नए भाई ने लिखा है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय किस धर्म के अंतर्गत आता है?
देवी देवता धर्म के अंतर्गत।
कुर्स किया,
ठीक है भाई, समझा देना जिसका साथी हो।
अच्छा, और एक कोई बिजनेसमैन है, कह रहे हैं कि मैं एक छोटी सी दुकान करता हूँ, परंतु ज्ञान मिलने की वजह से उस धंधे को ज्यादा नहीं बढ़ाकर हम अपने समय को ज्ञान योग में सफल करता हूँ, और थोड़ी बहुत रकम बैलेंस में है, उसको 1.5 रुपया सैकड़ा देकर उस ब्याज से घर का खर्च और बाबा की सेवा में लगाता हूँ, तो क्या ये विधि सही है?
सही तो है, पर कभी कोई ब्याज के साथ मूल भी न दे, ये भी सोच लेना। आजकल ये रस्म भी चल रही है। अगर आप इसकी स्थिति अच्छी है तो आपके जीवन में एक सुंदर बैलेंस आना चाहिए। अपनी दुकान पर भी ध्यान दो, आप ये गलती कर रहे हैं। जिसका भी प्रश्न है कि बिजनेस को पूरा छोड़ दिया, बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा, तो ठीक है, वो दुकान संभालते हुए भी किया जा सकता है। नहीं तो क्या है, फिर बैलेंस बिगड़ जाता है। मान लो कल पैसे की पूरी कमी रह गई तो लोग भी बोलेंगे, परिवार वाले बोलेंगे, और आप भी कहेंगे बाबा ने ही काम बिगाड़ दिया मेरा तो। मेरे पास ये अनुभव है लोगों के कि हमारा काम तो बाबा ने बिगाड़ा। क्यों? हम बाबा की तरफ ज्यादा चले गए, धंधों पे ध्यान नहीं दिया। मैं पूछता हूँ, बाबा ने कहा था क्या ऐसा? बाबा तो बैलेंस रखने के लिए कहते हैं। इसलिए ब्याज आदि के चक्रव्यूह में ज्यादा न फंसे। जिन्होंने लोगों को पैसे दिए हुए ना, वापिस आने वाले नहीं, आप समझ लें अच्छी तरह। इसलिए अपने काम धंधों पर भी ध्यान दें, पुरुषार्थ पे भी ध्यान दें, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। काम धंधे अच्छे चलेंगे, योग भी अच्छा होगा, योग अच्छा होगा, धंधे भी अच्छे चलेंगे, दोनों पर अटेंशन देना है।
किसी ने कहा मैं एक योगी बनना चाहता हूँ, तो योग में हमारी पूरी एकाग्रता हो, योग का संपूर्ण सुख मिले, तो किन बातों का हम ध्यान रखें?
बधाई हो, बहुत अच्छे, जिसको श्रेष्ठ योगी बनने की उमंग है, यही तो होनी चाहिए। इस पे क्लासेज है बहुत अच्छी, हमने योग के भिन्न भिन्न अभ्यास बताए हैं जो बाबा ने आज तक बताए हैं। बाबा ने 50 साल अव्यक्त में जितने योग के भिन्न भिन्न तरीके बताए हैं, वो सब यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। उसके आधार से एक प्रोग्राम बना लो, व्यर्थ से बचेंगे, मैपन से बचेंगे, स्वार्थ से बचेंगे। जो कुछ हमें करना होता है उसकी एक प्लानिंग चाहिए हमें। प्लानिंग के बिना कुछ प्राप्ति नहीं होगी। आप अपने योग को 4 घंटे तक पहले ले चलो, उसकी प्लानिंग करो कैसे, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ये सब संभव है, लेकिन विद प्लानिंग। और बाबा की मुरलियों में रोज सब कुछ आता है, क्या करो क्या न करो, वो मुरलियों से आपको मिलता रहेगा। योग की धुन लगाओ, लेकिन जो मैंने कहा बैलेंस, नींद और भोजन का बहुत आवश्यक है।
कईयों का प्रश्न है कि हमारे अंदर ऐसे पुराने स्वभाव संस्कार हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, और छोड़ने की हम अनेक प्रकार की विधियां भी अपनाते हैं, दृढ़ संकल्प किए, लेटर भी लिखे, वायदा भी किए, महसूस भी किए, लेकिन कभी कभी वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं।
लेकिन योग नहीं किया, साथ में ये भी जोड़ देते ना, ये सब तो किया। बिना पावरफुल योग के संस्कार बदलेंगे नहीं। इसलिए अगर आपको सचमुच बदलना है, 4 घंटे योग की प्लानिंग करो अपने जीवन में रोज, और 500 रूपों के अभ्यास को, स्वमान को विशेष महत्व दो। आपको अपना स्वरूप सामने रखना है, मेरा देव स्वरूप ये है, सामने लाओ, मेरे संस्कार ये हैं, ये नहीं जो अब हैं। ये अपने को अफर्मेशन कहते हैं इसको, संकल्प दें ऐसे, और योग साधना करें। केवल चिट्ठी लिखने से, केवल प्रतिज्ञा करने से, दृढ़ होने से काम नहीं चलता, साधन साधना अपनानी पड़ेगी। बहुत जल्दी बदल जाएंगे। आप एक एक संस्कार को ले लो, उसके लिए 1 घंटा रोज योग करो, 21 दिन, मुझे ये संस्कार बदलना है, उस पर होमवर्क करो, क्यों ये संस्कार इमर्ज होता है, कौन से संकल्प हैं इसके पीछे, कौन सी इच्छाएं हैं, कौन सी कमजोरियां हैं, उनके लिए ज्ञान के अच्छे संकल्प चुनो, और साथ में 1 घंटा रोज योग 21 दिन, कम से कम 21 दिन, ऐसा एक एक संस्कार लेकर साधना करेंगे, अटेंशन भी देंगे। मान लो किसी में एक छोटा सा संस्कार है, मैं आपको बताऊं, मैं कभी कभी सुनाया क्लास में, एक लड़की का डिवोर्स इसलिए हुआ, मैंने उसे पूछा क्यों, क्या हुआ, लड़ाई करती हो क्या, कहा नहीं मैं बहुत बोलती हूँ, सब दुखी हो गए, मैं चुप ही नहीं रहती। सास कहती थी हमें भी तो बोलने का मौका दो, पति कहता रे भाई तुम ही सारा बोल लेती है, कुछ हमें भी तो मौका दो। कहा मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकी, खुशी से घर आ गई हूँ, खुशी से, परेशान नहीं थी वो। तो थोड़ा ध्यान देंगे, अटेंशन भी देना है कि भाई मुझे अपने संस्कार को बदलना है, क्रोध आता है, थोड़ा ध्यान भी देना है, क्रोध किस परिस्थिति में आता है, कोई कुछ कहता है, बच्चे मानते नहीं हैं, मेरी कोई कामनाएं पूर्ण नहीं होती, धैर्यता की कमी है, क्या है जो क्रोध उभरता है, उस पर भी ध्यान देंगे तो निकल जाएगा।
किसी माता का ज्ञान, माता का ये प्रश्न है कि मैं अकेली ज्ञान में चलती हूँ, घर में लहसुन प्याज सब खाते हैं, तो घर में बाबा की याद में भोग कैसे कैसे लगाएं?
एक दिन वीक में, 1 दिन सबको बता दो, माताओं को अनुभव है, माताएं व्रत रखती थी, रखती थी, परिवार वाले कहते थे क्या कि ना रखो, रखती थी, उस दिन का वातावरण बहुत अच्छा होता था। सबको बता दो मुझे आज भगवान को भोग लगाना है, सब आपको सहयोग करेंगे, अपना किचन साफ करके, बर्तन अलग हो तो अलग, नहीं तो उन्हें ही अच्छी तरह धो साफ करके और भोग बनाओ, एक चीज बना लो, बाकी फ्रूट रख लो, और बहुत प्यार से बाबा को भोग लगा के परिवार वालों को भी खिलाओ। हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं आप, लेकिन अपने में भी कुछ ताकत तो चाहिए। बच्चे और बहू कहें नहीं बिल्कुल निकल जाओ तुम किचन से, तो ये तो काम नहीं चलेगा, अपने में भी थोड़ी ताकत चाहिए, भगवान को भोग लगाना है, समझाने की भी ताकत चाहिए। कई माता इतना कहेंगी मुझे भगवान को भोग लगाना बस, आगे भी कहो कुछ, इस घर में भगवान को भोग लगेगा तो बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी, आपदाएं विपदाएं नहीं आएंगी, भगवान की नजर हम पे रहेगी। तो ऐसा कोई राक्षस नहीं है संसार में जो इस बात को न माने, मानेंगे जरूर। अच्छी तरह समझाना सीखो।
कई हैं कि कहते हैं कि बाबा कहते हैं सर्व के प्रति अपनी भावनाएं बहुत अच्छी रखो, कोई कैसा भी हो लेकिन भावना खराब ना हो। लेकिन अगर सामने वाला बार बार गलतियां करता है, विघ्न डालता है, समस्याएं खड़ी करता है, तो उसके प्रति हमारी भावना कैसे श्रेष्ठ रहे?
तो ना रखो, सीधी सी बात। लेकिन भावनाएं अच्छी नहीं रखेंगे और कष्ट होगा अपने को भी, क्योंकि अपनी भावनाएं वापिस अपने ही पास आती है ना। मान लो उन्हें बड़ा खराब व्यक्ति है, मेरे जीवन को तंग बर्बाद कर दिया इसने, इसे पता नहीं कब पीछा छूटेगा। लेकिन भावनाओं को बदलना इसके लिए भी बहुत विशाल दिल चाहिए, क्योंकि ऐसे केस हर व्यक्ति के सामने होते हैं, हमारे सामने भी रहे। दुर्भावना आए उसे जल्दी सद्भावना में बदलो, आएगी जरूर। कि कोई व्यक्ति आपके पीछे ही पड़ा हो, आपका मार्ग ही रोक रहा हो, आपकी बदनामी करता हो, ब्लेम लगाता हो, उसके लिए अच्छी भावनाएं रखना कठिन काम तो है, लेकिन इस कठिन काम को हमें सरल करना है, क्योंकि हम ज्ञानी हैं। स्वमान बढ़ाएंगे, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, पूर्वज हूँ, इस देव देवी हूँ, तीन स्वमान, इससे धीरे धीरे भावनाएं बदलेंगी। आत्मिक दृष्टि रखेंगे, मुझे सबका कल्याण करना ही है, ये भावना अपने अंदर पक्की कर दें, धीरे धीरे बदलेंगी। इसमें घबराने की बात नहीं कि बदल नहीं रही है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी तो हिसाब किताब लेने आया है ना। क्षमा याचना और क्षमादान, ये बहुत बड़ी चीज है दोनों। जिन बहनों को या भाइयों को नींद भी आती है ना योग में मुरली में, वो भी ध्यान दें कि दिमाग पर कोई प्रेशर है, दबाव है, चाहे वो चिंताओं का हो, चाहे पूर्व जन्मों का हो, पास्ट, इस जीवन के पास्ट का हो, कुछ घटनाएं हो गई हो जीवन में जिसको यहां रख लिया हो। क्षमा याचना करना, क्षमादान दे देना, बहुत गुड रिजल्ट इसके आप देखेंगे, इसका भी अभ्यास करना।
और उन्हीं का क्वेश्चन है कि हम किसी के प्रति सुभावना रखते हैं, बाबा ने कहा कि सुभावना रखो तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन हम तो सुभावना रखते रखते थक गए, उसका रिजल्ट दिखाई नहीं पड़ता।
ठीक बात है, ठीक बात है। ऐसा कईयों के साथ, बस इसमें मुझे बाबा की एक ही बात याद आती है कि जब वो अपनी नेचर नहीं छोड़ते तो हम अपने शुद्ध संस्कार को क्यों छोड़ें? सीख लो उनसे, वो टीचर हैं आपके। वो उधर तेज काम करते रहे, आप इधर तेज काम करते रहो, थोड़ी मेहनत का तो है, लेकिन इस बात को याद रखेंगे तो इसमें सफलता हो जाएगी, थकेंगे नहीं। फिर
ये प्रश्न है भाई जी का कि एक भाई पूछ रहे हैं कि संगम युग, 100 वर्ष के संगम युग में कितने वर्ष कलयुग के हैं और कितने वर्ष सतयुग के हैं?
संगम युग में 150.5 वर्ष कलयुग के हैं, ये कलयुग का अंत का पीरियड है और ये 2036 में पूरा हो रहा है। उसके बाद श्री कृष्ण और देवताओं के जन्म के साथ जो आगे समय जाएगा, उसको 35 साल गिन लें आज, एवरेज 35 साल, वो सतयुग की ओर ले जाने वाला होगा। लेकिन फिर भी बाबा ने ये कह दिया है कि 111 तब से ही शुरू होगा जब वो गद्दी पर बैठेंगे। इसलिए रियल जो स्वर्ग है वो तो तब से प्रारंभ है जब श्री लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठ गए। 111 तो उससे पहले के जो 35 वर्ष हैं, ये भी कलयुग के ही अंतिम पीरियड से कट जाएंगे। संगम 100 साल स्थापना और विनाश का है, और बाकी जो ये समय लगेगा ये सतयुग के फिजिकल निर्माण का, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो। रही बात 5000 साल की, वो तो आप कहीं से भी शुरू कर दो, 5000 साल घूम के वहीं ले आओ। मान लो आप दो वो 2036 से शुरू करते हैं, तो अगले 2036 में खत्म कर लो। आप और 36 साल जोड़ते हैं, 2070 से शुरू करते हैं मान लो, तो फिर 2070 पे वो 5000 पूरे हो जाए। ये तो सर्किल है, जहां से शुरू करोगे वहीं 5000 पूरा हो जाएगा, इसमें किसी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं।
किसी ने पूछा है कि कुछ पास्ट की ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी बातें हैं कि जिसे हम भुलाना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार याद आता है और हम परेशान होते रहते हैं, दुख देता रहता है। तो जो पास्ट में कड़वाहट बातें आ गई है, उसको हम कैसे खत्म करें, कैसे?
बिल्कुल, ये बात, पास्ट को भूलना हर एक के लिए सहज नहीं होता। किसी ने आपको बहुत सताया हो, बुरे संग में आकर किसी ने बहुत बुरे कर्म किए हो, वो सीन बहुतों के दिमाग पे छाए रहते हैं। वो तो छोड़ो, जो आजकल के युवक व्हाट्सएप पे गंदे सीन देखते हैं, उनको वो नहीं दिमाग से हटा पाते। इसका नींद पर असर आ रहा है, अनिद्रा की समस्या बढ़ती जा रही है, थोड़ी मेहनत करेंगे। देखिए, आप ऐसा सोच लो, हमारा जो ब्रेन है ये एक स्क्रीन है। आपने देखा होगा कभी कैसेट चलती थी, कैसेट जिनमें रिकॉर्ड होता था, उनके ऊपर दूसरा रिकॉर्ड कर देते थे तो पहला डिलीट हो जाता था ना, पहला खत्म हो जाता था। तो हमें जो हमारी पुरानी बातों की स्मृतियां चित्त में समाई हुई हैं, हमें कुछ और समा लेना चाहिए। ज्ञान का चिंतन, रोज मुरलियों से कुछ 2-3 सुंदर बात अपने पास लिखो जो आपको सुंदर लगती हो। हो सकता है मेरी सुंदर बातें आपकी सुंदर बातें ना हो, जो आपको बहुत इफेक्टिव लगती हो वो लिखो, स्वीकार करो। आप इस बात को गहराई से समझ लें, जिस चीज को ध्यान देंगे आप, जिस चीज को आपने गहराई से ले लिया वो समा गई अंदर, पुरानी को खत्म करेगी। किसी पास्ट की दुख भरी बात को, किसी के व्यवहार को, किसी के अपमान को आपने गहराई से अंदर ले लिया है ना, ऐसे ही ज्ञान की बातों को गहराई से लो, और जो पास्ट को गहराई से ले लिया है उसको हल्का करो कि ये हमारे कर्मों के हिसाब किताब थे, या मुझ पर कलयुग का प्रभाव था, या मैं बुरे संग में गया, कोई बात नहीं, पूरा हो गया, जो कुछ भी मैंने किया अब तो मुझे भगवान मिल गए, अब एक अच्छी चीज पर आ जाओ। पास्ट मेरा अंधकार से भरा हुआ था, लेकिन अब तो मैं रोशनी में आ गई। चिंतन बढ़ाओ तो पिछला हल्का हो जाएगा। स्वमान की प्रैक्टिस दिमाग की पुरानी बातों को डिलीट कर देती है। सेवा में भी लगो, लेकिन हल्का करना जरूरी है, और सुंदर विचार क्रिएट करो तो सुंदर विचारों के प्रभाव से पास्ट के खराब विचार धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। ध्यान भी रखना है कि ये बीत गया, इसको अब नहीं लाना है दिमाग में, थोड़ा रिजेक्ट करो उसको, तो इतने सब साधन अपनाने से पास्ट भूलने लगेगा।
एक प्रश्न है कि वर्तमान समय हम दुनिया में अनेक प्रकार की परिस्थितियां देखते हैं, तो इन परिस्थितियों में लोगों में अनेक प्रकार के भय, चिंता, निराशा, तो ऐसी परिस्थितियों में रहते हुए हम अपने मन को शांत कैसे रखें, कैसे पॉजिटिव रखें?
पुरुषार्थ के द्वारा, ये सब तो कुछ भी नहीं है। मैं एक लेख की बात बता देता हूं आपको। कल मैंने राजस्थान पत्रिका में, हमारे यहाँ राजस्थान पत्रिका नाम का अखबार है, उसमें एक वैज्ञानिक का लेख पढ़ा कि जलवायु परिवर्तन इतना ज्यादा हो रहा है, धरती के अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया है। कई चीजें उसने लिखी कि ये कोरोना तो ट्रेलर है, पिक्चर्स का ट्रेलर दिखाते होंगे, मैं तो कभी देखे नहीं, ये तो ट्रेलर है। 5 से 10 साल तक इस प्रकृति में इतने विस्फोट होंगे जिसके बारे में किसी की कोई तैयारी नहीं। तीसरी लहर की तो तैयारी कर ली है, लेकिन जो अर्थक्वेक्स होंगे उनकी तैयारी नहीं है, किसी को पता ही नहीं। अभी हम बैठे, अभी हो जाए, 1 मिनट में तो खेल पूरा कर देगा। इसलिए ये जो निराशा, डर, ये जो वातावरण बना हुआ, मुझे कहना नहीं चाहिए पर कहना जरूरी है, ये बढ़ेगा। इसलिए अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बनाना है कि हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को भी भय और निराशा से बाहर निकाल सकें। यह स्थिति तो बढ़ती जा रही है क्योंकि मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। मैं डराने के लिए बात नहीं कह रहा, आपको समझना है। बहुतों के अंदर घबराहट बढ़ रही है, बिना मतलब भय बढ़ रहा है, नींद की समस्याएं बढ़ रही हैं। ये चक्र वहीं आ रहा है जहां से चला था, इसलिए सभी के विकर्म जो मनुष्य ने किए हैं वो अब जागृत हो रहे हैं। ये वर्तमान की घटनाएं नहीं डरा रही मनुष्य को, उनके पूर्व जन्मों के पाप कर्मों से उत्पन्न हुआ ये भय है जिसको संसार के लोग नहीं जान सकते। कोई घटना हो जाती है तो वो जागृत हो जाता है भय और घबराहट। इसलिए बहुत अच्छा योग अपने को साक्षी बनाना है। अच्छा, लडोल स्थिति पर भी बहुत क्लासेज हैं, बहुत बहनों ने भी कराई हैं, मुरलियम बहुत पॉइंट आते हैं, उसको अभ्यास लाना है अभ्यास में, और जो कुछ होगा उसके लिए स्वयं को तैयार भी करना है और उसे स्वीकार भी करना है। खेल काफी बिगड़ेगा लेकिन वो कल ही बिगड़ जाएगा ऐसा नहीं, कल सुनहरा दिन भी हो सकता है और फिर हम सबको तो पता है स्वर्णिम युग भी आएगा। इसलिए ये त्रासदी भी खत्म होगी और हम एक सुंदर युग में भी प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी को अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा। अपने को पावरफुल बनाएं, जो अवल वेले रह गए वो उस चक्रव्यूह में खुद भी उलझ जाएंगे।
किसी का प्रश्न है कि बाबा कहते हैं सभी को संतुष्ट करो और हम सामने वाले को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हमेशा असंतुष्ट ही रहता है, नाराज ही रहता है।
उसने दृढ़ संकल्प कर लिया है संतुष्ट न होने का। हम सब इन चीजों से गुजरे हैं। बाबा ने मेरे से 3 बार पूछा होगा व्यक्त, बाबा ने सब संतुष्ट हैं क्योंकि ये मुख्य पॉइंट है, और मैं हर बार कहता था नहीं। फिर एक बार बाबा ने कहा उसका कारण तुम हो या वे, मैंने अच्छा उत्तर दे दिया था तो छोटा कि मैं ही हूं। फिर अगली बार फिर पूछा, चौथी बार मैंने कहा बाबा कई लोग जो आपने मेरे से पूछा ना, मैं बाबा से पूछा, कई लोग तो संतुष्ट होते ही नहीं, क्या करें। कहा तुम अपने को चेक करो, तुम्हारा तो कोई कारण नहीं है, गलत बोल दिया हो, कोई चीज नहीं दी हो। बाकी अगर वो असंतुष्ट रहते हैं तो उसके जिम्मेदार वो स्वयं है। पुरुषार्थ का रहस्य बाबा ने बता दिया, मुझे ही बताया था पर्सनली, जब तुम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट होंगे तो दूसरों को संतुष्ट करने की कला आ जाएगी। और फाइनल बाबा ने उत्तर दे दिया, 95% लोग संतुष्ट होने चाहिए, 5% तो होंगे नहीं, उसकी प्रभु जी ने छुट्टी दे दी।
5% छुट्टी है
क्योंकि उन्होंने भी संकल्प किया होता है ना, हमें संतुष्ट नहीं होना है, उनमें पावर रहती है।
एक माता जी का प्रश्न है कि कहते हम तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हैं, तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए।
यही जो बाबा ने बनाई है, यही जो आपकी यहाँ है, सवेरे उठ के अच्छा योग करो, अपने घर के कामकाज करते हुए एक सुंदर प्लान कर लो, भोजन बनाते ये अभ्यास करेंगे। देखिए योगी बनने के लिए या तीव्र पुरुषार्थ के लिए कर्म योगी बनना आवश्यक है, बैलेंस भी आवश्यक है और कर्म योग। तो अपना एक प्लान बनाओ। मैं बहुत क्लासेज में ये बात सुनाई है, ये मैंने 6 मास किया था अपने जीवन में, कि अपने कर्मों की लिस्ट बनाई। मैंने तो 35 लिखे थे, छोटे छोटे कर्म भी, आप 15 लिख लो। हर कर्म में अलग अलग अभ्यास सेट कर दो। भोजन बनाएंगे ये अभ्यास करेंगे, भोजन खाएंगे ये अभ्यास करेंगे, पानी पिएंगे ये अभ्यास करेंगे, घर की सफाई करेंगे ये अभ्यास करेंगे, कपड़े धोएंगे ये अभ्यास करेंगे, ऑफिस जाएंगे ये करेंगे, लिस्ट बना दो। स्नान करेंगे ये अभ्यास करेंगे, तो तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। फिर रिपीट कर देता हूँ, अपने पुरुषार्थ की प्लानिंग खुद करनी है और उसको चेंज करते रहना है। एक ही प्लानिंग सदा नहीं चलेगी, 15 दिन में चेंज कर लो, मास में कर लो, अच्छा चलता है 3 मास में कर लो, तो उमंग उत्साह बनी रहेगी।
कई बार हम कहते हैं कि बाबा ने कहा है मुझे यूज करो और मैं तुम्हें मदद दूंगा, तो पूछ रहे हैं कि हमारे सामने विघ्न परिस्थिति आई, हमने बाबा को आह्वान भी किया, बाबा आ जाओ, लेकिन हमें तो बाबा की मदद मिली ही नहीं।
बाबा आया नहीं। आता कौन है? जिससे हमारा बहुत प्यार हो, अपनापन हो, जिस पर हमने अधिकार कर लिया हो। गहरी बातें हैं। नाता जोड़ कर ये नाता जोड़ लिया हो, वो मेरा है। गहरी बात है, मोटी नहीं। मेरा बाबा कह दिया। अधिकार हो, हमारा योग भी अच्छा हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। जब उसने खुद कहा है मुझे यूज करो, खुद कहा है ना, हमने थोड़ा ही कहा, तो कैसे हो सकता है कि वो मदद न करे? कहीं गड़बड़ है। एक सीन याद आ गया मुझे, जिससे मुझे बहुत फायदा हो। बात बहुत साल पुरानी है, 20 साल पुरानी होगी। यहीं ऊपर हॉल में विदेशियों का सीजन था मार्च में, एंड में बाबा को भोग लगा और संदेश आया। मोहिनी बहन है अमेरिका की, उसके संदेश अच्छे होते हैं। संदेश आया, वो संदेश लाई कि अभ्यास करना कि बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है और बाबा तुम्हारा है, बाबा को यूज करना। 1 साल का होमवर्क दिया बाबा ने। और देखो, मैंने वो सुन लिया, हालांकि मैं अपने कमरे में था। अचानक मैं स्पीकर के पास खड़ा हुआ और संदेश सुन लिया। मेरे लिए ये बन गया अमृत। मैंने पूरा साल ये बहुत अभ्यास किया, बाबा का आह्वान किया, उसको काम दिया, उसने किया। अगले साल फिर बाबा आए, अब ध्यान से सुन लेना, फिर मोहिनी बहन ने भोग लगाया। बाबा ने कहा बच्चों को होमवर्क दिया था, बच्चे तो भूल गए पर बाप नहीं भूला है। क्योंकि अब दूसरे विदेशी थे, वो तो थे नहीं जिनको काम दिया था, दिया तो सबको था। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, बाबा तो वतन में इंतजार ही करता रहा कब मेरे बच्चे मेरे पास आए, और जब देखता था ये 1000 भुजा वाले के पास नहीं जा रहे, 2 भुजा वालों के पास जा रहे हैं, तो सोचते थे अब इनके लिए क्या करें। गहरी बात है ये। योग हमारा अच्छा हो, नाता गहरा हो, जब वो हमें कुछ करने को कहता हो तो हम कुर्बानी के लिए तैयार हों, जब हम कहेंगे वो भी तैयार होगा। देख लें आप कहाँ कमी पड़ रही है। मेरे को तो रोज के अनुभव है, मैं रोज करता हूँ। मुझे कुछ तकलीफें हो गई थी, अभी लूज मोशन बहुत हुए थे तो तकलीफ हो गई थी, ब्रेन वीक हो गया, और मैंने सारी क्लासेज तब से कम 20 सिर दर्द में कराई। आंखें बंद हो रही हैं, विदेशों की क्लास चल रही, संसार के कई 1000 लोग सुन रहे हैं, क्लास भी प्योरिटी पे हो रही है, 4 क्लास उन्होंने मांगी है प्योरिटी पे। मैंने क्या किया, बाबा कहा देखो मेरे बस का तो कुछ है नहीं, सिर दर्द इतना है कि जो मुझे ज्ञान योग है वो भी भूल गया है मेरा। होता है ना, बोलने से ही सिर फटता था। मैंने कहा अब एक घंटा सवा घंटा है, आप संभाल लो कमान जरा, मुझे भी संभाल लो, कैसा ना मैं सो जाऊं, और आप कर देना जो करना, क्योंकि हजारों विदेश के लोग बैठे हैं, ट्रांसलेशन हो रही है कई भाषाओं में, और संपूर्ण सफल हुए आज ही मैं ठीक हुआ हूं बहुत अच्छी तरह से। तो ऐसा नहीं होता कि बाबा से हमारा गहरा नाता हो, हमने उससे फ्रेंडशिप कर ली हो, लेकिन हम भी तो कुछ कर रहे हो, हम कुछ न करते हो और कहें तुम कर दो तो काम नहीं चलेगा। तो मदद करता है।
बाबा के बड़े सुंदर महावाक्य है कि बच्चे भुलाए बाप ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो बाबा तो जरूर आएगा जब,
लेकिन भक्तों की तरह हो जाता है। शिवरात्रि पे भगत जागते हैं, बाबा की मुरली सुन ली ना, बाबा भक्तों के पास जाता है और भक्ति में मान्यता है कि शिव आएगा रात को, लेकिन कई भक्त भांग पी लेते हैं, झूम रहे हैं, शिव बाबा पहुंच गए, उनको उसको देखने का नेत्र ही नहीं है, वो भोग भाग खा के वापिस चले गए, उन्होंने देखा ही नहीं, समझ गए ना। हमें तीसरा नेत्र मिला, उसको खोल के रखें, बाबा का आना, उनकी उपस्थिति, उनकी मदद, सबका आभास होगा। निराश ना हो, अगर नहीं हो रहा है तो बढ़ाएं, होगा।
अंतिम प्रश्न है, वर्तमान समय प्रमाण बाप दादा हम सभी बच्चों से क्या चाहते हैं?
साक्षी हो जाओ, स्थिति को निर्भय और अचल अडोल बनाओ, संसार को सकास देनी है तैयार करो अपने को। आप जितने भी आए हैं, जो भी आप में से अच्छे योगी हैं, वो चिंतन करेंगे मेरे पास संसार को देने के लिए क्या क्या है, देने का समय आ रहा है, आपके द्वार पर बहुत लोगों की भीड़ लगेगी, देना होगा, अच्छा योग चाहिए, साक्षी भाव, सरल चित्त स्थिति, जो बाबा की मूल्यों में रोज आ रहा है, साकार मूल्यों में, उस पर ही ध्यान दें तो समझ में आता जाएगा क्या करना है।
पूछ लो, एक आ गया है, तो उनका प्रश्न है कि डिटैचमेंट, उपराम स्थिति और साक्षी दृष्टा।
साक्षी दृष्टा का अर्थ होता है देखना, और जो कुछ देख रहे हैं उसका इफेक्ट हम पे ना हो। उपराम, इस संसार से ऊपर चले गए, संसार की कोई चीज हमें अट्रैक्ट नहीं कर रही है। तीसरा शब्द क्या था?
डिटैच।
मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूं, यह अभ्यास करेंगे हर चीज से डिटैचमेंट हो जाएगा। बीज यहां है, आत्मा अटैच है देह से, देह से डिटैच होने का अभ्यास करेंगे, उपरामता भी आ जाएगी, साक्षी भाव में भी बहुत मदद मिलेगी। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम सभी के प्रश्नों का बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।